وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی۔ ہاں، سننے والوں کو عید مبارک۔ ہم جہاں رنگ بہاول پور کے قریب تیل کے ٹینکر پھٹنے سے تقریباً 160 لوگوں کی ہلاکت کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں حکومت نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آگے چل کر ہم پارا چنار دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ، بھارتی کشمیر میں عید کے موقع پر بھی جاری مظاہرے، اور آخر میں بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات پر بات کریں گے۔ اور آج بھی ہمارا شو فیس بک پہ ہوگا، لہٰذا آپ لوگ facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس ہولناک واقعے کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل بہاول پور کے قریب ایک آئل ٹینکر پھٹا، اور لوگوں کی غفلت کی وجہ سے کوئی 150 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سارے اور زخمی بھی ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے وزیر جو بین الاقصوبائی معاملات کے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو، جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو بھی تھرو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس حوالے سے، یعنی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے احمد پور شرکیہ میں، اس کے حوالے سے آئیے ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ناصر محمود۔
پاکستان میں پیر کو عید نسبتاً سادگی سے منائی گئی۔ اتوار کو احمد پور شرکیہ کے قریب ایک آئل ٹینکر الٹ جانے سے اس میں سے بہنے والے تیل کو جمع کرنے کے لیے قریبی آبادیوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچی تھی کہ اسی دوران ٹینکر میں زوردار دھماکہ ہوا اور تیل نے آگ پکڑ لی۔ اس واقعے میں 150 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ ضلع بہاولپور میں پیش آنے والے مہلک واقعے کے باعث وزیراعظم نواز شریف اپنا نجی غیر ملکی دورہ مختصر کر کے پیر کی صبح لندن سے وطن واپس پہنچ گئے، اور بہاولپور اور احمد پور شرکیہ میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات اور زخمیوں کی اعادت کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے مرنے والوں کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے امدادی رقوم کے ساتھ ساتھ انہیں سرکاری ملازمتیں دینے کا بھی اعلان کیا۔
مل کے طے کیا کہ جتنے بھی یہ لوگ جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان سب کو انشاءاللہ جس جس کو بھی کوئی جاب کی ضرورت ہوئی، نوکری کی ضرورت ہوئی، ان سب کو نوکری بھی دی جائے گی، اور اگر ان کے لواحقین میں سے کوئی ہے ان سب کو جو نوکری جو ہے وہ دی جائے گی۔
تحصیل احمد پور شرکیہ میں فضا پیر کو بھی سوگوار رہی، اور مرنے والے ایسے افراد جن کی لاشوں کی شناخت ہو چکی تھی انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ درجنوں لاشوں کی شناخت کے لیے جینیاتی تجزیے یعنی ڈی این اے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ بری طرح جھلسنے کے باعث یہ شناخت کے قابل نہیں رہی تھیں۔ متعدد زخمیوں کو بہاول پور سے ملتان منتقل کیا گیا تھا، اور قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ملتان اور بہاول پور سے کراچی یا لاہور علاج کے لیے جانے والے زخمیوں کو بلا معاوضہ سفری سہولت فراہم کرے گی۔ پیر کو تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات کے علاوہ تفریح گاہوں اور عوامی مقامات پر سیکورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا۔ ملک بھر میں نماز عید کے بعد حالیہ مہلک واقعات میں مرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ حالیہ افسوسناک واقعات کی وجہ سے ایوان صدر میں ہونے والی عید کی خصوصی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی، اور ملک کی قیادت نے عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کی۔ جمعے کو پارا چنار میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں لگ بھگ 65 افراد مارے گئے تھے، جبکہ اسی روز کوئٹہ میں ایک بم حملے میں 14 لوگ جان سے گئے۔ جمعے کی شام کراچی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی سے ابتدا کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب، یہ بتائیں کہ جو اطلاعات یہاں امریکی میڈیا میں آئی ہیں، وہ اس کے مطابق جو بھگ دوڑ مچی تھی لوگوں کی جو تیل جمع کرنے کے لیے قریب گئے تھے اس آئل ٹینکر کے، اور آئل ٹینکر کے پھٹنے سے یہ جھلس کے مر گئے، یہ بتائیے، ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پولیس یا انتظامیہ کی کتنی غفلت تھی اس معاملے میں؟
دیکھیے، پولیس یا انتظامیہ کی غفلت جو ہے نا، وہ تو ہمارے یہاں ہر واقعے میں ہوتی ہے، اور یہ جو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، آپ ذرا دیکھیں گے، نیکسٹ ویک بھی ایک پروگرام کیجیے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعہ کسی کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا۔ یہ آئل ٹینکر مافیا ہوتا ہے ایک، جو پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہے، सरकारी एजेंसियां, सरकारी कंपनियों के जो PSO जैसे है उसके भी जो टैंकर हैं वो इन्हीं रोड्स पर से गुजरते हैं, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता, कोई अलार्मिंग कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लोगों को पता चल सके, उसके पीछे बस एक लिख दिया जाता है, एक फिक्रा लिख दिया जाता है कि फासला रखिए, बस इतनी सी बात एक होती है। बाकी उसी तरह जैसे आम रूटीन की ट्रैफिक होती है उसी में से ये सफर करते हैं, वहां किसी वक्त भी इससे भी खुदा न खासा खौफ ना खासा कहीं भी हो सकता है। सो इसलिए हमें यहाँ पे किसी तरह की कोई हैरत नहीं है। हाँ अलबत्ता सिर्फ इतनी बात जो है जो कहा गया कि तहकीकात की जाएगी, लवाहिकीन को मदद दी जाएगी, ये सारे सियासी बयानबाजी पाकिस्तान में होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम कहते थे खाक नशीनों का खून है, रिज़्क़े खाक हुआ, तो ये दो दिन में बात भुला दी जाएगी। अब ये जो उनके लवाहिकीन को पैसे देने वाली बात है, ये पैसे भी रिश्वत होते हैं पाकिस्तान में, ये वोट बैंक पक्का करने की बात होती है, जख्मियों को जो पैसे दिए जाएंगे उनको मुलाजमतें जो दी जाएंगी, तो ये ख्याल हुकूमत को पहले क्यों नहीं आया? इस ये पूरा का पूरा खत्ता जो है यहाँ कोई हुकूमत काम नहीं करती, यहाँ के वडेरे इलेक्ट होते हैं, यहाँ के अरकान असेंबली जो भी इलेक्ट होते हैं
जी हाँ
अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं।
लेकिन फारूकी साहब ये सही है, आप की बात दुरुस्त है, और बल्कि हम रियाज हुसैन पीरजादा को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो सरकारी मौकफ इसमें पेश करेंगे, लेकिन आपके भी इल्म है कि लोगों ने क्योंकि नाबालिग हैं और ना समझी का भी उन्होंने मुजाहरा किया, तो वो एक जलते हुए टैंकर की तरफ लपके, ऐसे में आपके ख्याल में पुलिस का वहाँ होना और इन लोगों को रोकना?
जी वो जी जलते हुए टैंकर की तरफ नहीं लपके थे, एक तो बात यह है कि गुर्बत इतनी ज्यादा है कि लोगों को मौत से भी नहीं डरते, एक तो यह कि उनको पता ही नहीं था कि इसके नतीजे में ना तो वो तालीम याफ्ता है ना बाशऊर है, कोई काम सादा से देहाती गरीब पसमांदा जिनको कोई ऐसे वाकयात जो है ना जिनके बारे में उन्हें शऊर नहीं होता उनका इससे ताल्लुक, वहां थोड़ी बहुत पुलिस थी, उन्होंने कुछ लोगों को रोका है, लेकिन लोग जो है वो सारे के सारे वो तेल इकट्ठा करने वाले नहीं थे, तमाशा देखने वाले लोग भी वहां बेशुमार थे, गाड़ियां चलते हुए वहां रुक गई वो भी उसकी लपेट में आई हैं। तो सो ये मामला ये है, मैंने आपको ये बताया कि ये आयल टैंकर जो है इसी तरह के आयल टैंकर ये हमारी रोड्स पे सफर करते रहते हैं, ये आयल टैंकर उलट गया वहां पे, इसलिए लोग वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए, उन्होंने तमाशा देखा, उन्होंने पेट्रोल वहां से आयल जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया वो घरों से कनस्तर, आप अंदाजा कीजिए ना कि वो वाटर कूलर जो है बोतलें जो है वो लेके तो वहां से वो आयल इकट्ठा कर रहे थे। सो ये सिर्फ ग्रीडी पीपल नहीं थे, लालची नहीं थे, ये बेशऊर लोग थे, गैर तालीम याफ्ता लोग थे, और यहाँ कभी इस तरह का तस्वुर भी नहीं होता। फिर आप देखें ना, हमें ये हाथ वाकया जरूर हो गया, ये हादसा जरूर हो गया, इन लोगों की जानें किसने बचानी है? इन लोगों की जानें बचाने के लिए वहां कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। अब अहमदपुर शर्किया से भावलपुर में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, भावलपुर से आप इन लोगों को उठा के बेचारे लोगों को जो मर रहे हैं इस वक्त उनको आप लेके गए हैं मुल्तान में, और वहां भी उसकी कितनी कैपेसिटी है निस्तर हॉस्पिटल में, उस कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ये इन लोगों की तादाद है, और फिर वहां से अब आप उनको मुंतकिल कर रहे हैं लाहौर में। सो ये जो करोड़ों अफराद का ये जो खिता है, आपको मालूम है कि तकरीबन 10 करोड़ पंजाब की आबादी है, इस 10 करोड़ की आबादी में जनूबी पंजाब जो है जहां से इसकी हदें शुरू हो जाती हैं वो तकरीबन हाफ हमारी आबादी है, इस हाफ आबादी में कितने बर्न यूनिट हैं, कितने बिस्तर हैं? अगर 5 करोड़ की आबादी के लिए 50 बिस्तर होंगे कहीं, या 60 हैं, या 100 हैं, तो ये कहाँ की सेहत की कोई सहूलत है? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये वाकया अपनी जगह पे, उन लोगों की लापरवाही अपनी जगह पे, पुलिस भी उन्हें नहीं रोक सकी, और 40 मिनट तक वहां पे देखिए उसका तेल बहता रहा, इस दौरान इंतजामिया का कोई फर्द वहां नहीं पहुंचा।
बिल्कुल सही है,
उन्होंने वहां सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए जो पुलिस वाले थे उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश की है, वो भी एक गाड़ी में कुछ लोग थे, सो वो उनसे कंट्रोल नहीं हुए। इस दौरान बाकी इंतजामिया जो है वो सोई रही, उसमें से कोई नहीं वहां पे पहुंचा, और ये आपको ये मालूम होना चाहिए, ये तो हादसा हो गया ना वहां पे, हमारे यहाँ कई और वाकयात भी ऐसे होते हैं जब ऑयल टैंकर से ऑयल लीक कर रहा होता है और वहां पे खुशकिस्मती से कोई ऐसा हादसा नहीं होता, ये मामला यहाँ पे चलते रहते हैं, ये रूटीन है, इस मुल्क की बदकिस्मती है। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे होते हैं, पुलिस होती है, वो रिश्वत लेके इन लोगों को गुजरने देते हैं हर जगह से, हर क्रॉसिंग से, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे काम करते हैं, ना इंतजामिया काम करती है, और जो हमारी सियासी लीडरशिप है, खा मौजूदा है या पहली वाली कोई लीडरशिप होगी, ये सारे के सारे लोग सियासी रिश्वत के तौर पर इनके लिए इमदाद का ऐलान करते हैं, लवा यकीन के लिए पैसे देते हैं, जख्मियों के लिए पैसे देते हैं, और वो बेचारे इसलिए कबूल कर लेते हैं, उनको पता है कि उनके लोग मर गए, अब वो पैसे लेके तो अपना मुस्तकबिल बना लें।
जी जी, क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन का जो दौरा है उसको कट शॉर्ट किया और वो वापस लौटे हैं, वो अहमदपुर शर्किया पहुँचे हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, दीगर जो सूबाई अफसरान हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे राबता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके फ़ोन इस वक्त हमें बंद मिल रहे हैं। अगर रियाज हुसैन पीरज़ादा हमें मिलते हैं तो उन्हें भी हम थ्रू करते हैं। लेकिन फेसबुक पर जो कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ लोगों ने कॉल भी किया है उनको भी हम लेते हैं। डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मलिक कहते हैं कि ये जहालत और हवस का भी एक नतीजा था। उसके अलावा कमर अब्बास रज़ाक ने लिखा है, इफ्तखार अहमद ने लिखा है हकीकत बोलो, मेहरान जॉन ने, और साइप्रस से भी किसी ने ईद मुबारक हमें दिया है। हमें लोग इस वक्त कॉल भी कर रहे हैं, उनकी भी कॉल्स को हम थ्रू करते हैं क्योंकि अमेरिका में और दुनिया भर में इस वाक़े को देखा जा रहा है कि ये वाक़या क्यों कर हुआ और इस तरह के वाक़यात को मुस्तकबिल में कैसे रोका जा सकता है। खालिद फारूकी की तरफ लौटते हैं। खालिद फारूकी, ये आप बताएं कि अहमदपुर शर्किया उन जगहों में से हैं जहां नज़र आता है कि हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी है और जो शहरों में तरक्की है वो देहातों में हम तरक्की नहीं देखते। आपका क्या ख़्याल है कि पीएमएल नून की हुकूमत ने लोगों को तालीम देने से कितना दूर रखा है?
तालीम देने से ही दूर नहीं रखा बल्कि सेहत की सहूलतों से भी दूर कर दिया है, और तमाम पैसा जो है कुछ मखसूस प्रोजेक्ट्स जो हैं होने चाहिए, वो उससे किसी को इनकार नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मेट्रो बनने चाहिए, यहाँ ऑरेंज ट्रेन भी आनी चाहिए, यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज भी आनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि क्या इन अस्पतालों में कोई सेहत की सहूलतें जो हैं उनको बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है या नहीं है। सो ये सहूलतें हमें नज़र नहीं आती, और बिलखसूस आप लाहौर जैसे बड़े शहर में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो अमराज कल्ब के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ लोग इस तरह मर रहे होते हैं, वहाँ पेशेंट जो है वो ज़मीन पे लेटे होते हैं, उनके लिए एमरजेंसी में जो पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट अटैक होते हैं उनके लिए एक आपको कई एक ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जिसमें वो लोग बेचारे जो हैं वो एमरजेंसी में ज़मीन पे लेटे होते हैं। सो हमने एक अपना एक फेस एक बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम सिर्फ वो काम करते हैं जहां से हमें कोई प्रॉफिट नजर आता है, वो सियासी मुनाफा हो या माली शक्ल में हो, ये सारी चीजें होती हैं। जो आपने सवाल किया देहात की, लाहौर शहर जितना आपको खूबसूरत नजर आता है इससे जस्ट आप बाहर निकल के देखें वो उसी तरह की एक जिंदगी शुरू हो जाती है जो पसमानदा तरीन जिंदगी होती है, जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती। फिर कुछ इलाकों को तरक्की दे दी गई, लेकिन आपको ये बताएं कि जो जनूबी पंजाब बिलखसूस है, मैं जनूबी पंजाब से तो मेरा ताल्लुक नहीं है, हम तो लाहौर में रहते हैं, लेकिन जो जनूबी पंजाब है यहाँ की जिंदगी कतई मुख्तलिफ है, बिल्कुल आपको एंटायरली डिफरेंट एक लाइफ वहां नजर आएगी, और इतनी गुर्बत, इतनी पसमानदगी और सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। जो वहां पे जो बने होते हैं सेहत मराकज जो होते हैं वहां बडेरों के जानवर बंधे होते हैं, हॉस्टल जो होते हैं वहां डॉक्टर मौजूद नहीं होते। सो ये एक ऐसी वस सूरत हाल है जिसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देना होगी। प्राइम मिनिस्टर की बहुत मेहरबानी कि वो लंदन की में अपनी ईद को छोड़ के तो इधर पाकिस्तान में ईद मनाने के लिए आ गए, पिछली सारी ईदें उन्होंने वहीं पे गुजारी हैं, उनकी मेहरबानी है ये, लेकिन वो अवामी नुमाइंदे भी हैं, उनका किसी पे एहसान भी नहीं है। अगर सीएम भी वहां गए हैं तो ये उन्होंने अच्छा किया है। पाकिस्तान में इस वाक़े पर बहुत अफसोस है, बहुत रंज है, दुनिया भर में इससे अफसोस किया जा रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल फिर वही आएगा कि जितने पैसे आज इन लोगों को दिए गए क्या इतने पैसे लगा के अहमदपुर शर्किया में, बहावलपुर में, रहीम यार खान में या दूसरे बाकी जो वहां पे जिले जो हेडक्वार्टर हैं क्या वहां इस तरह के बर्न यूनिट नहीं बन सकते थे जहां इमरजेंसी में आप पेशेंट को लेके जाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हादसा या ऐसा इतना खौफनाक वाकया अगर कोई वहां पे रहीम यार खान जैसे दूर दराज इलाके में हो जाता है तो उसके लिए यहाँ लाहौर का जनरल हॉस्पिटल जो है यहाँ पे पेशेंट को लाया जाता है और वो लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पे रेडियो पे अपने मरीजों को लेके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं।
जी हाँ,
तो हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का, स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसें लाने का जो महंगी तरीन होती हैं वो रिवाज तो है, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें हैं फराहम करने की, वो पूरी हुकूमत जैसे पूरी नहीं करती रही, ये हुकूमत भी अपने इन मामलों में उस तरह से दूर है।
जी हाँ बिल्कुल, और एक ताज़ा रिपोर्ट भी आई थी कि इस वक्त शहरों और देहातों में फ़र्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर पंजाब के इलाके में। बाहर कैफ आप हमारे साथ रहें, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रियाज हुसैन पीरजादा से राबता हो, जो ही होता है तो सरकारी मौक़िफ़ के लिए उनको हम ले आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं बहावलपुर के करीब तेल के टैंकर फटने से 160 लोगों की हलाकत के बारे में। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़्याकार खालिद फारूकी हैं। हमें कुछ लोगों ने कॉल भी किया है, चूनिया से कॉल किया है तारिक चुगताई ने, रावलकोट से सैयद हबीब ने, और कोहाट से मलिक नायब खान ने। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, और फेसबुक पे कुछ दिलचस्प कमेंट्स आए हैं। हमीद खान ने लिखा है कि इस तरह के वाकयात के लिए आगाही फैलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होना ज़रूरी हैं। अदनान अली अंजुम ने लिखा है कि लोग इस वक्त इलिटरेट हैं और इग्नोरेंट हैं, यानी जाहिल हैं। एक ने लिखा है, उमर अली ने लिखा है गो नवाज़ गो, और मीर फिरोज़ ने ईद मुबारक लिखा है कश्मीर से, भारतीय कश्मीर से, और भारतीय कश्मीर के हवाले से फिर आगे चलकर भी हम प्रोग्राम्स करेंगे। तारिक चुगताई को लेते हैं जो चूनिया से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, बात कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम बहन, ये इकराम दिलखराश वाकया जो ईद से एक रोज कबल आमदपुर शर्क किया मैं गुजरा, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसमें जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है कि इसमें अवेयरनेस तो है ना, होनी चाहिए, ऐसे वाकया तो होते रहते हैं, लेकिन उसमें पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जरूरी
जी
है।
हाँ, बिल्कुल वही बात जो कि हमारे फेसबुक, बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सैयद हबीब कुछ कहना चाह रहे हैं रावलकोट से। जी जनाब, बात कीजिए।
जी सलामकुम, एक तो कल रात से मैं कोशिश कर,
अरे कल रात से कोशिश कर रहे हैं और अभी फोन कट गई। मलिक नायब खान कुछ कहना चाह रहे हैं कोहाट से। वालेकुम सलाम।
जी, मैं मेहमानों से अर्ज कर रहा हूँ कि अहमदपुर शर्किया का जो वाकया हुआ था उसमें तो कुछ गलती लोगों की भी थी कि टैंकर उल्टा गया और ये लोग बाल्टियां लेकर जा भाग रहे थे कि हम पेट्रोल संभाले। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो फिर भी खुशकिस्मत थे कि वजीर आजम ने इसके लिए 20-30 लाख रुपए मौत वालों के लिए और जख्मियों के लिए 10-10 लाख, कबेली इलाकों में तो लाखों लोग मर गए। उसके लिए तो नवा शरीफ ने कोई ऐलान किया या 3 लाख रुपए देते हैं वो भी तड़प तड़प के उसको मिलते हैं।
जी हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया और बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कुरम एजेंसी पर हम अब भी 2 मिनट के बाद आते हैं और उस वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक पे राजा हिदायत ने लिखा है कि रियासत ज़िम्मेदार है इस खौफनाक हादसे के लिए जिसमें 160 लोग हलाक हुए हैं। हमीद खान ने लिखा है कि अच्छा मैंने पढ़ के सुनाया, अदनान अली अंजुम ने और उमर अली ने भी लिखा है। अगर कोई ठोस सवाल हो तो वो कीजिए। खालिद फारूकी की तरफ लौटते हैं। फारूकी साहब, जाने से पहले आप अगर इस पर तबसरा करें कि पब्लिक अवेयरनेस यानी अवाम में शऊर फैलाने के लिए क्या किया जाए ताकि वो इस तरह के वाकयात आइंदा ना हो।
देखिए, अवेयरनेस के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अवाम के पास तालीम होनी चाहिए। तालीम है नहीं और इस तरह तवज्जो नहीं दी जा रही। जितने हमारे मुल्क में सरकारी स्कूल थे उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्कूल पंजाब में पहले से थे उनमें से बहुत से स्कूल प्राइवेट जो तंजीमें थी उनके हवाले किए गए। अब ये स्कूल जो हैं, जब वो वहाँ पे तालीम की उस तरह की सहूलतें होंगी नहीं और फिर जो टीचर हम वहाँ पे भर्ती करते हैं उनकी अपनी अवेयरनेस कोई नहीं होती। आप ये समझिए कि जो हमारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो ग्रेजुएशन तक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमारे टीचर्स जो इन स्कूलों में पढ़ाते हैं उनकी बेसिक तालीम जो है वो एफ ए तक होती है, यानी 12 क्लासेस वो पढ़े होते हैं। 12 क्लासेस तक उनके लिए कोई मुझे किसी जगह पे जो उनके सब्जेक्ट कोई ऐसा नजर नहीं आता जहां पे इस तरह के इश्यूज को डिस्कस किया गया हो। हमारे तमाम जो इश्यूज बन गए हैं वो या मजहबी बन गए हैं या फिर कुछ और तरह के चीजें उनमें शामिल हो गई हैं। ये ह्यूमैनिटी के हवाले से, हादसात के बारे में अवेयरनेस के हवाले से, आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि लाहौर जैसे शहर में वो जो एक जो इदारा होता था जिसका काम फायर ब्रिगेड का जो इदारा होता था वो तक नहीं रहा, अब उसकी जगह पे 112 बना, पिछले परवेज अली दौर में बना था, वो बहुत अच्छा एक इदारा बना, लेकिन वो हर जगह पे मौजूद नहीं है, वो इतना नहीं है, उसको इस तरह फैलाया नहीं गया। लेकिन ये कि ये अवेयरनेस जो है एजुकेशन से आएगी, एजुकेशन से अगर आप उसके लिए पैसे इतने खर्च करेंगे जो हर साल महदूद ही हो रहे हैं, अगर आप उसको एक्चुअली देखें आबादी के तनासुब से, तो फिर ये अवेयरनेस नहीं आएगी। ये सारी की सारी सियासी गेम्स चलती रहेंगी क्योंकि कोई ऐसा इसके पीछे गवर्नमेंट का किसी का कोई ऐसा पर्पज नहीं है। ये वाकया जिस पर सारी दुनिया में अफसोस का इजहार किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी यकीनी तौर पे आज अफसोस का इजहार किया गया, लेकिन ये देखिए दुआओं से सिर्फ काम नहीं चलता। यूरोप में और अमेरिका में लोग सिर्फ दुआओं से ये काम नहीं चला रहे, वहाँ हॉस्टल बन रहे हैं, वहाँ तालीम दी जाती है, वहाँ अवेयरनेस होती है, और ये सारा कुछ जो है हुकूमतें रियासतें अपना फर्ज समझ के ये काम करती हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह के वाक़े के बाद तहकीकात के नाम पे, अभी ये जो तहकीकात है इसके लिए एक सूबाई वजीर की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, आप अंदाजा करें कितना बड़ा हादसा है। किसी को अब तक ये नहीं पता चल सका कि ये किन किन जगहों से ये टैंकर जो है किन किन क्रॉसिंग से गुजर के आए, कहाँ कहाँ इनको, इनके ड्राइवर क्या वो इतने थे एजुकेटेड थे कि उनको ये ट्रक दिए जाते जिन पे वो ट्रेलर दिए जाते जिन पे वो ये सारा लेके जा रहे थे। यहाँ जिसका जी चाहता है वो ड्राइविंग लाइसेंस उठा के ले लेता है। सो कोई एक जगह पे खराबी नहीं है, खराबी बेशुमार जगहों पे है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वहां पे ऑयल गिरना शुरू हुआ तो उनका अपना स्टाफ जो था वो क्यों भाग गया वहां से, अब तक वो पता नहीं पकड़े भी गए हैं कि नहीं पकड़े गए। सो एक एक जगह पे
ड्राइवर तो पकड़ा गया है और हम पता करेंगे कि असल वजूहात क्या थी कि उसने इतना बड़ा खौफनाक हादसा किया, और इसको हम कल भी लेंगे उठाएंगे। लेकिन इस वक्त हम इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजयाकार खालिद फारूकी जो लाहौर में होते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का और हमारी तरफ से खुदा और मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त फेसबुक पे भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि पारा चिनार को ना भूलें। जैसे कि आप जानते हैं कि जुम्मे को वहाँ पर एक खौफनाक वाकया हुआ था और बहुत सारी हलाकतें हुई थी। इस वक्त आमिर नबी ने लिखा है, हैदर बंगश ने लिखा है कि इसकी कुछ वीडियो भी दिखाइए जो मज़लूम अफराद हैं पारा चिनार की, इसके बारे में निसार वर्दिंग ने लिखा है और फरहाद निसार ने लिखा है। हमारे पास रिपोर्ट भी है लेकिन साथ साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कुरम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर सैयद सरफराज अली शाह ने, और शाह साहब आपको खुश आमदेद। तो ये बताइए कि बहुत ही अफसोस हुआ कि जुम्मे को जिस तरह का वाकया हुआ, और आपकी जब मैंने रिपोर्ट सुनी तो उसमें आप शिकायत कर रहे थे कि मकामी इंतज़ामिया का बड़ा इम्तियाजी सलूक रहा है आप लोगों की तरफ, इसके बारे में कुछ बताइए।
जी असल में ये एक के बाद दिगर जो धमाके होते रहे हैं ये तकरीबन एक सिलसिला है जो 7-8 धमाके हो चुके हैं अभी तक, और उसमें सैकड़ों अफराद हमारे शहीद हो गए हैं और सैकड़ों अफराद हमारे बेदस्त और बेफा हो गए हैं। ये असल में बात दरअसल है कि एक 2 किलोमीटर के मुरब्बा 2 किलोमीटर के फासले पे जिस शहर की आबादी हो इतनी महदूद और उस पे सैकड़ों चेक पोस्ट हो और उस पे आर्मी FC और लिवी फोर्स वाले तैनात हों, एक सुई भी मकामी बंदा अंदर ना ले जा सकता हो तो बड़ी ट्रक बारूद से या मसलन गाड़ी या मसलन खुदकुश कैसे दाखिल हो सकता है। सबसे पहली बात ये, दूसरी बात ये कि मसलन हमारे शहर से चारों तरफ खंदक खोदी गई है और گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے, چیکنگ کر کے اندر جانا پڑتا ہے. اپنے گھروں میں بھی اگر ہم جانا چاہیں, باہر آئیں تو جانا چاہیں تو گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر بھی یہ دھماکے کیسے ہوئے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مثلا کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں.
یہ بتائیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ کرم ایجنسی میں بڑی شیعہ آبادی ہے. آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مقامی انتظامیہ جو ہے وہ ایک خاص طبقہ ہے آبادی کا جس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنا ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ہم موحد وطن ہیں اور وفادار ملک ہیں. دیکھیں, ایک علاقے میں, ایک شہر میں ایک بار دیگر واقعات ہوتے رہے اور لاشوں کو اٹھانے والے لوگوں پہ ڈائریکٹ ایف سی یا آرمی والے فائر کرتے رہے, پھر بھی وہ مزاحمت نہ کریں, مثلا کسی حکومتی عملہ کو نقصان نہ پہنچائے, یہ ہماری سیولائزیشن یا موحد وطن کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کے ہم کیا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہمارے سیولائزیشن کی حد یہ ہے کہ اگر ہم پہ گولیاں بھی برسائیں اپنی لاشوں کو اٹھانے کے وقت, معمولی سی مزاحمت پر یا معمولی سی احتجاج پر, اپنے حق پہ آواز اٹھانے پہ ہم میں بالکل نہ مثلا لاٹھی چارج استعمال ہوتی ہے, نہ مثلا آنسو گیس استعمال کیا جاتا ہے, ڈائریکٹ گولی مار دی جاتی ہے. اور جتنی بھی خودکش دھماکے ہوئی ہیں, ہر خودکش دھماکے کے فوراً بعد ہم پہ تھریٹ فائرنگ کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے.
یہ تو بڑی ہولناک بات ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ سرکاری موقف بھی آئے اس میں, لیکن ہمیں کیونکہ اس وقت فیس بک پہ اور کالرز نے بھی کافی بھرمار کر دی ہے, ان کو باری باری لیتے ہیں. اور ذرا مختصر بات کیجئے کالرز, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. اور اگزئی ایجنسی سے گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
جی جناب.
السلام علیکم, عید مبارک.
آپ کو بھی عید مبارک.
آپ کو اور آپ کی سب کی ٹیم کو, ماہرین کو, سننے والا کو, کالر والا سب کو عید مبارک. میڈم بس صرف ایک دو بات کر دے. پورے ایجنسی میں تو ایک دھماکہ ہو گیا, بس جو ہو گیا ہو گیا, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بس حالت بہت خراب ہے. لیکن ایک بات صرف کرتا ہوں یہ ٹینکر کے بارے میں, جب آپ خود کہا کہ 40 منٹ تک کوئی حملہ ادھر نہیں پہنچا اور لوگ تو ہے جاہل, لیکن 30 منٹ تک کوئی حملہ نہیں پہنچا تو یہ کیسے ادارے ہیں ہمارے اور ملک کو سنبھالے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور کیونکہ یہ بہت سارے واقعات ایک ساتھ ہوئے ہیں, لیکن اس وقت ہم چند منٹ کے لیے صرف پارہ چنار پہ بات کر رہے ہیں. محمد ایاز نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب, محمد ایاز میاں والی سے. اچھا, ڈراپ ہو گئی. اور بابا زیدی نے کال کیا ہے نوشہرہ سے. بابا زیدی, وعلیکم السلام.
معاہدہ دے رہے پنجاب کو, یہاں پر جو ہے نا چنار میں جو ہوا ہے ان کو کوئی معاہدہ نہیں مل رہا. اور کل کی بات ہے, کل جو تھا نا اوڈیشہ میں 8 بچے جو ہے نا بم دھماکے سے مر گئے, اس کا بھی پوچھنے والا کوئی نہیں آیا. پاکستان پنجاب میں کہ نہیں, یہاں کے لوگوں میں بھی
بالکل صحیح. اور ہمیں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فیس بک پہ بھی جو کامنٹس آ رہے ہیں, عزیز علی شیخ نے لکھا ہے کہ نواز شریف کا کاروبار پاکستان سے باہر ہے اور حکومت وہ پاکستان پر کر رہے ہیں. دل بٹ نے لکھا ہے, ناصر ہش ہوپی نے لکھا ہے پنجاب کے ووٹس کا پاور اور پارا چنار پاکستانی نہیں. میر باسط نے لکھا ہے کہ صرف معاوضہ دینا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. سید سرفراز علی شاہ, آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے آج مظاہرہ کیا اسلام آباد میں, کوئی ریسپانس دیکھا سرکار کی طرف سے؟
اصل میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رحمان ملک صاحب, ہم مشکور ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, وہ آئے, ہمارے حوصلہ افزائی کی, ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور اسی طرح آئی جی پولیس آئے اسلام آباد, उन्होंने भी परवपुरा टाउन का इजहार कर लिया। बाकी ऐसे कोई भी रिस्पांस हमें अभी तक नहीं मिली है जिससे हम मुतमईन हों और हमें पाकिस्तानी होने पे फख्र हो, या मसलन हमें थोड़ा वो एहसास हो कि हमें भी कोई पाकिस्तानी तस्वर कर रहे हैं और हमें भी समझ रहे हैं कि हम मोहदे वतन हैं और पाकिस्तानी हैं।
जी, आपके मसले को हम आगे चलकर भी उठाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया इस मोड़ पे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कुरम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर सैयद सरफराज अली शाह का, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और वहाँ मुजाहरे की सरबराई कर रहे हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज भी भारतीय कश्मीर में ईद मनाई गई, लेकिन उसके बावजूद मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी रहीं। हमारे पास इस वक्त एक रिपोर्ट भी है इस हवाले से, और हमें ज्वाइन भी किया है एक सीनियर तज्ज़ियाकार नूर अहमद बाबा ने, जो श्रीनगर में होते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले आप लोगों को यूसुफ जमील की ये रिपोर्ट सुनाते हैं इसी मौके पे।
शोरज़दा वादी कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों की तरह पीर के रोज ईद उल फितर मनाई गई। इस मौके पर ईदगाहों, मस्जिद, दूसरी इबादतगाहों में लोगों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज अदा की और दुआइया मजालिस में शिरकत की। ताहम इसके फौरन बाद कई इलाकों में इज़्तिराबी कैफियात पैदा हो गई, जब लोगों बिलखसूस नौजवानों ने भारत से आज़ादी के मुतालबे के हक में नारे लगाते हुए सड़कों का रुख किया, जहां पहले से मौजूद हिफाजी दस्तों ने उनका रास्ता रोकने के लिए बांस के डंडे चलाए और आंसू गैस के गोले दागे। मुजाहिरीन ने जवाबन उन पर पथराव किया। बाज मकामात पर हिफाजी दस्तों पर संगबारी की पहल नौजवानों की टोलियों की तरफ से हुई। बहरहाल तरफेन के दरमियान गरमाई दरनगर, शुमाल मगरबी शहर सोपोर और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शुपियान और राजपोरा चंद दूसरी जगहों पर यह सिलसिला कई घंटे तक जारी रहा। दर्जन अफराद, जिनमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं, जख्मी हो गए। नीज इन इलाकों में ईद की तकरीबात मुतासिर हुई। पुलिस के एक तर्जमान ने कहा कि अनंतनाग में एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 5 पुलिस अफसर संगबारी के वाकयात में जख्मी हो गए। मुजाहरीन में से कई एक की भी चोटें आईं। बारामूला के पलहालन इलाके में भी मुजाहरीन और हिफाजत दस्तों के दरमियान तसादुम की इतला मिली है। सिरेन के मजाफात में वाक़ चाडूरा इलाके में सैकड़ों लोगों ने आज़ादी मार्च किया और फिर उस कब्रिस्तान पर जमा हो गए जहां इस साल मार्च में हिफाजत दस्तों की फायरिंग में हलाक होने वाले 2 मकामी नौजवान दफन हैं। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ताज़ा भारत मुखालिफ जो 3 माह पहले शुरू हुई थी, मुजाहरीन और पथराव करने वाले हजूमों पर हिफाजत दस्तों की फायरिंग और दूसरी कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अस्करियत पसंदों के हमलों और उनके और हिफाजत दस्तों के दरमियान हुई झड़पों में 2 दर्जन हिफाजती अहलकार और तकरीबन इतनी ही तादाद में जंगजू मारे गए हैं। गुज़श्ता जुमेरात की शब श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर सादा लिबास में तैनात एक पुलिस अफसर की इस कदर मारपीट की कि वो मौके ही पर हलाक हो गया। इस वाकये की सूबे में और सूबे के बाहर सियासी और समाजी जमातों ने, जिनमें इस्तेसाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी जमातें और उनके कायदीन भी शामिल हैं, शदीद मजम्मत की और इसे मकामी अकदार और मजहब इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। पीर को ईद के मौके पर तशद्दुद में इजाफे के खदशे के पेश नज़र हुकाम ने गैर मामूली हिफाजती इंतजामात के तहत जगह जगह मुसल्लह पुलिस और नीम फौजी दस्तों की इजाफी नफरी बिठा दी थी। इससे पहले सरकदा आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कारकुनों को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया था, जबकि कौम परस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिन मलिक को गिरफ्तार करके श्रीनगर की मरकजी जेल में बंद कर दिया गया। कश्मीर के मजहबी और सियासी रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने खाना नज़रबंदी के दौरान سری نگر کی عیدگاہ میں جمع ہونے والے مسلمانوں سے فون پر خطاب کرتے ہوئے بھارت سے آزادی کا مطالبہ دہرایا اور کہا کہ قدغنے اور بربریت کشمیریوں کو اپنے اس بنیادی حق کے مطالبے سے نہیں روک سکتی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اسی کا تجزیہ کرنے کے لیے نور احمد بابا کی طرف جاتے ہیں جو کہ سری نگر میں ہیں۔ نور احمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نظر آتا ہے کہ کشمیری جد و جہد نہیں رکنے والی، عید کے موقع پر بھی اتنے ہولناک قسم کے فسادات ہوئے ہیں، کچھ کشمیری لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آخر کار وہ کیا چاہتے ہیں؟
چاہنے کو تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں، اس کا جو واحد نعرہ ان کا ہے آزادی۔ آزادی کے کیا معنی ہے وہ بعد میں وہ تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن آزادی ہے لوگوں کی مانگ۔ آزادی کے کنارے کے گرد سب لوگ گھومتے ہیں یہاں پر۔
جی جی، تو آزادی سے کیا مراد ہے؟ بھارت کے اندر رہتے ہوئے، بھارت کے اندر رہتے ہوئے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟
بیسیکلی یہاں کے لوگ جو کہتے ہیں، جو لوگ اس آزادی کے لیے لڑتے ہیں یا شدت پسند جو لیڈرشپ یہاں کی ہے جو اس موومنٹ کو چلاتے ہیں، وہ ان کی ریفرنس 47 کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں 47 میں کشمیر کا جو ایکسیشن ہوگا وہ صحیح نہیں ہوا تھا، اور اس میں جو کنڈیشن تھی، جو شروط تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، اور جو یونائٹیڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوئے ہیں اس کے مطابق بھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا کے وعدوں کے مطابق بھی، ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس کا فیصلہ، کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو کیونکہ ابھی تک وہ استثبار بھی رائے ابھی تک ہوا نہیں ہے، یہ اسی دائرے کی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بیچ میں کشمیر میں حالات کا قدرے بہتر ہو گئے تھے 70s میں 80s میں، لیکن جو 80s کے آخر میں کچھ حالات اس نے ایسے پلٹ کھائے کہ یہاں بہت زبردست طریقے پہ ملٹنسی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد ایک ہمگیر پاپولر موومنٹ شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ ابھی تک چلتا رہا۔ ملٹنسی بیچ میں جب وہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ماحول سازگار ہونے لگا اور بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، اور کچھ امید بنی ہوئی تھی، یہاں بھی بات چیت ہو گئی تھی واجپئی کے زمانے میں، اس کے بعد بھی منموہن سنگھ کے کسی حد پہلے کچھ سالوں کے اندر، تو یہاں کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، امید کی فضا بنی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ امید کی فضا بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ ایک ناامیدی کی، مایوسی کی ایک کا ماحول بن گیا، اور ایک شدت پسندی دونوں طرف سے، گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بول نہیں چاہتے کسی سے بات چیت کریں، اور اس ماحول نے زیادہ الینیشن کو بڑھا دیا، اور ان کا زور ہے اور زور زبردستی سے آرمی کے تھرو اس مسئلے کو دبایا ہے۔ لیکن جتنا بھی ہمارا تجربہ ہے کہ جتنا بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا الٹا ہی نتیجہ نکل رہا ہے۔
بالکل صحیح ہے۔ جی جی نور احمد صاحب، کیونکہ
دوبارہ ہو رہی ہے، اور اس طرح کے جو پبلک پروٹیسٹ ہو رہے باری وغیرہ ہوتی ہے، یہ بھی بڑھ رہی ہے۔
جی ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بین الاقوامی سطح پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ کیل میں ہیں کہ نریندرا مودی بھی ابھی واشنگٹن میں آئے ہوئے ہیں، اور آج ان کی ملاقات ہونے والی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ کچھ میرا خیال ہے 20 منٹ کے بعد ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ کس وقت ملاقات ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہم کوٹلی کشمیر سے ہمیں کال آئی ہے، صوبیدار عنایت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کی کال ڈراپ ہو گئی، اور محمد اقبال نے بھی ہمیں کال کیا ہے کشمیر سے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
میں محمد اقبال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔
جی جی۔
اور میں بڑے غم کے ساتھ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، عید مبارک آپ سب کو، اور عالم اسلام کو، جو دو واقعات ہوئے ہیں، ان میں جو پنجاب کا واقعہ ہے اس میں بھی ہمیں بڑا رنج ہے، اور میری اسیسمنٹ کے مطابق، میں اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا ہے، اور اس میں پنجاب حکومت کی کچھ نیگلیجنسی نظر آ رہی ہے۔ اور جو پاڑا کنار کا ہے وہ بھی میرے خیال میں جو اپنی میری اسیسمنٹ ہے، کیونکہ صرف اتنی پھٹی نہیں ہے، اور وہاں اندر سے بھی کچھ جو شاہ صاحب باتیں سن رہا تھا۔
جی جی، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہمیں فیس بک پہ جن لوگوں نے لکھا ہے, ایک نے دلچسپ جواب دیا جو سوال میں نے پوچھا تھا نور احمد بابا سے. انہوں نے کہا, میر باسط نے لکھا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو نقشہ ہے اس پر ایک اور ملک کا اضافہ کیا جائے. نور احمد بابا صاحب, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں, لوگ جو کشمیر سے لکھ رہے ہیں,
جی یہ اکثریت کا ہی اس کا مطلب یہ ہے. کچھ لوگ پہلے پہلے اس کا آپشن تھا پاکستان لینے کا, لیکن وہ اتنا پاپولر نہیں ہے جتنا آزادی کا جذبہ ہے. آزادی کے لیے آزادی اس مطلب ہے کہ دونوں ایک سپریم اسٹیٹ جائے, اس سوورنٹی میں کہیں کمپرومائز نہیں ہے. ہم تھوڑا کمپرومائز اس کے گھر میں اسٹیٹ ہو سکتی ہے, لیکن عام آدمی جو سمجھتا ہے وہ سوورن اسٹیٹ ہی سمجھتا ہے.
جی ہاں, اور جانے سے پہلے آپ کی کوئی توقعات ہیں یہ نریندر مودی جب ملیں گے آج ڈونلڈ ٹرمپ سے؟
جی ہاں, میرا سمجھتا ہے کہ ان حالات کو آپ سسٹین نہیں کر سکتے جو یہاں ہو رہا, اور جو ایک ٹینشن کا ماحول ہے ساؤتھ ایشیا میں, جس دنیا کی طرف جس ماڈل کی طرف ہم موو ہو رہے ہیں گلوبلی, اس میں تو ایک کوآپریشن کا ماحول ہونا ہے. ابھی جو انڈیا اور پاکستان دونوں کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہو گئے ہیں, تو اس کی ممبر شپ کا مطلب نہیں ہے جب تک ان دو ملکوں کے آپس میں کوآپریشن نہ ہو. اس کے ذریعے ہندوستان, رشیا, چائنا اور سینٹرل ایشیا جا سکتا ہو, لیکن راستہ جو موجود راستہ اس کے لیے پاکستان ہو. کئی ریٹیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور نور احمد صاحب, کیونکہ جی جی جی, کیونکہ اسی یہی
کرو ابھی بھی یونائیٹڈ نیشنز جنرل صاحب دیا تھا کہ وہ پردے پیچھے کچھ دونوں سربالا ہیں, پاکستانی پرائم منسٹر سے نیگوشیشن میں ہے, وہ کچھ کر رہے ہیں دونوں ملکوں.
جی ہاں, ہمارے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں. جی ہاں, لیکن کیونکہ ہمیں بات کرنا ہے مودی کے امریکہ کے وزٹ کے بارے میں, لہٰذا اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر تجزیہ کار سری نگر سے نور احمد بابا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع جڑا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ, لیکن خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی واشنگٹن پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ اپنے دو روزہ قیام کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے. توقع کی جا رہی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ان کی ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے انڈیا کی جو ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے فاؤنڈر لیفٹیننٹ جنرل کمال داور نے, جبکہ ہمیں یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق نے بھی جوائن کیا ہے. لیکن آئیے اسی حوالے سے, یعنی کہ جو نریندرا مودی کی ٹرپ ہے امریکہ میں, اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
ظاہری علامات تو اچھی ہیں. بھارتی وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے سے کچھ روز قبل بھارت کے ایک دیہی قصبے نے, جہاں بجلی یا پینے کے پانی کا فقدان ہے, اپنا نام ٹرمپ ولیج رکھ لیا. ہندو قوم پرستوں کے ایک گروپ نے 14 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ منانے کے لیے ایک بڑے کیک کے ساتھ ایک پارٹی منعقد کی. تاریخی اعتبار سے بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا انحصار دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے ذاتی مزاج پر رہا ہے, اور اس خیال کا جواز موجود ہے کہ مودی اور ٹرمپ ذاتی طور پر آگے بڑھیں گے. اگرچہ وہ دونوں اس سے پہلے کبھی نہیں ملے ہیں، تاہم وہ دونوں سوشل میڈیا میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اندرون ملک ملازمتیں پیدا کرنے پر بہت زیادہ مرکوز ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے ساتو لمائے کا کہنا ہے،
they are professional deal makers. To be sure, one is comes from more from a private sector background and one comes from a combination of
وہ پیشہ ورانہ طور پر معاملہ طے کرنے والے لوگ ہیں، ایک نجی سیکٹر کے پس منظر سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا پارٹی اور بھارتی حکومت دونوں میں عہدوں کا ایک پس منظر رکھتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ معاملات کیسے نمٹائے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کوئی بیان کیسے دیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایسٹ ویسٹ سینٹر کے مسٹر ساتو کے۔ تجارتی مسائل مذاکرات میں پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے بھارت کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جن کی پالیسیوں پر امریکہ کے ساتھ ان کی بڑی تجارت کی وجہ سے نظر ثانی ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے H-1B ویزے پروگرام سے متعلق امریکی امیگریشن کے ضابطوں پر نظر ثانی کا حکم بھی دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پھلتی پھولتی صنعت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکی کاروباری ادارے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت اقدامات کریں، کیونکہ تجارت کے حوالے سے بھارت کے سابقہ رہنماؤں کے بڑے بڑے بیانات توقعات پر پورے نہیں اترے تھے۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف مینوفیکچررز کی لنڈا ڈیمپسی نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا،
We have long, as manufacturers, sought a bigger and more improved relationship
ہم نے صنعت سازوں کے طور پر بھارت کے ساتھ زیادہ بڑے اور مزید بہتر تعلقات کی خواہش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سی پرانی رکاوٹیں ابھی تک باقی ہیں اور نئی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ الفاظ تھے نیشنل ایسوسی ایشن آف مینوفیکچررز کی لنڈا ڈیمپسی کے۔ ماضی کے برعکس امریکہ اور بھارت کے سربراہی اجلاس میں کسی بڑے معاہدے کی توقع نہیں کی گئی ہے، اگرچہ بھارت امریکی پریڈیٹر ڈونز کی کئی ارب ڈالرز کی خریداری پر زور دے رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور مودی کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات اس سلسلے کو درست کرنے کا ایک موقع ہے جو واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان آنے والے برسوں کے لیے کوئی راستہ متعین کرے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہم بھارت کے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل کمال داور سے ابتدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ بھارت کے دفاعی خفیہ ادارے کے بانی بھی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل داور، آپ ہمیں بتائیں کہ مودی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کیے تھے، یہ باتیں انہوں نے یہاں کچھ بزنس مین کے آگے بات کی، لیکن ہمارے پاس آج جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ مودی، نریندرا مودی کی اس بات کی بی بی سی کی ایک رپورٹ نے تردید کر دی تھی۔ یہ بتائیے، اتنا سخت گیر جو موقف اختیار کیا ہے آپ کی سرکار نے پاکستان کی طرف، اور آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر میں بھی ایک شورش جاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو، ہندوستان، پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی ہیں اور دنیا میں بھی، سب کو عید مبارک کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ امن شانتی رہے ہر جگہ۔ ناؤ، آپ نے جو مجھے سوال کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان نے اور پردھان منتری نریندر مودی نے اور ان سے پہلے پردھان منتریوں نے پاکستان کی طرف ہمیشہ ایک ہاتھ، ایک فرینڈشپ کا ہینڈ آف فرینڈشپ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کس پاکستانی لوگ کس وجہ سے اپنی وہی پرانی پالیسیز پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ ٹیررزم اور ادھر ادھر فضول میں کام کرنے، جن کا کوئی فائدہ نہ ہندوستان کا ہوگا، نہ پاکستان کا ہوگا، اور نہ ہی آپ کو اسلام کو کوئی آپ کچھ آگے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے مہربانی کر کے کہ ہندوستان میں ہمارے آپ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہر مذہب کے all hues of the Islamic faith, چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے اسماعیلیز، احمدیہ، سب یہاں رہتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں آپ یہ اس چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ چلیے، اس بات کو چھوڑتے ہوئے، آپ نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ڈیل ویل کیا ہو رہی ہے
سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں، کہ سرجیکل سٹرائکس، جی جی، کیونکہ نریندر مودی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں یہاں۔
بالکل ٹھیک، اچھا ایسا ہے جی، یہ جو سرجیکل سٹرائک ہوتی ہے، میں بھی کیونکہ فوجی رہا ہوں تو میں بھی وہاں جموں کشمیر میں رہا ہوں وغیرہ وغیرہ کافی سالوں سے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ हमें तो हिंदुस्तान को तो कोई जरूरत नहीं है वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल जो के और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो सीएचएन में है जो कि पूरी तरह डेमार्केटेड है। और 71 की लड़ाई के बाद आपके जनरल साहब ने उनका मैं नाम भूल रहा हूँ और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बाकत ने साइन किए हुए हैं, पूरी लकीर जो है नक्शे पे लगी हुई है, किसी को कोई वो नहीं है। और हमने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर सीधी पंजाब से होती हुई राजस्थान बॉर्डर पे। एक्चुअली आपको आधी आधी कीमत तो आपको अदा करनी चाहिए थी, बिकॉज हमें तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हम तो टेररिस्ट अंदर दहशत गर्द आपके देश से नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तक मैं काफी देर से फौज में रहा हूँ, अब आप तो खैर रिटायर हूँ, लेकिन कि क्या क्या आपको क्या मिल क्या रहा है, कोई ज्योग्राफिकल लाइंस नहीं चेंज होंगी, वो तो आप भूल जाइए, आप चाइना के जितने मर्जी गुलाम भी बन जाइए कोई लाइन चेंज नहीं होगी।
अच्छा,
इसमें किसी को कोई शक नहीं
अच्छा,
होना चाहिए।
अच्छा, आप हमारे साथ रहें, हम प्रोफेसर फैजान हक की तरफ जाते हैं, ये बैनुल अख्वामी तालुकात के माहिर हैं, यहाँ बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर फैजान हक, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी सख्तगीर मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, ये जो रवैया है इसका आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, अमरीकी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा खित्ते में?
जी, सबसे पहले सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे और सब लोगों को बहुत ईद मुबारक। असल में जो नरेंद्र मोदी हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो हम सबको मालूम है कि गुजरात से उठे और कैसे उठे और कहाँ पहुँचे। और इस वक्त भारत का मैं इंडिया एक्सप्रेस की न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बड़े मज़े की बात उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी कि इंडिया हैज बिकम द हिंदू पाकिस्तान। तो इसमें हमें ये देखना है कि उनकी जो ये अप्रोच या जो उनकी पोजिशनिंग है वो हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा मंद है या नहीं। इसका यकीनन उन्हें सियासी तौर पर राइट अवे फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं और पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं। अब अगर हम ये देखें, वो कलबुश वो जो यादव साहब पकड़े गए हैं पाकिस्तान में, वो वहाँ पर वकेशन तो नहीं कर रहे थे, पूरी सबूत जो हैं वो मौजूद हैं कि इंडिया ने बहुत इंटरफेरेंस की है बलूचिस्तान में और दूसरे इलाकों में, और ये जो दहशतगर्दी है ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जो दोनों स्टेट्स ने इक्वली अपनाया है, कोई वहाँ पर मासूम नहीं है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर जब हिंदुस्तान को जब भी असला बेचा जाता है, चाहे वो अमरीका हो या कोई और हो, तो हमेशा वो नज़र में रखते हैं कि इसका उस खत्ते पे असर क्या पड़ेगा। तो उसमें ये है कि एक असले की दौड़ जो है वो वहाँ पर मौजूद है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इंटेंसीफाई होगी। और जैसे सन 1960 का मेरा ख्याल दहाई थी जब इंडिया को बहुत से एमुनिशन बेचा गया था अमरीका से कैनेडी के ज़माने में, और वो सब का सब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, और पाकिस्तान ने यही ऑब्जेक्शन दी थी। उस वक्त भी बहाना यही था कि चाइना के खिलाफ होगा, लेकिन वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। और हम देखते हैं कि जो इंडिया की हेजमनी है साउथ एशिया में, उसमें अगर कोई मुल्क अपने गर्दन अकड़ा के खड़ा है या खुददारी से अपना आप मुकाम पैदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो तो इंडियन टेरिटरी है, वो ही चलाते हैं उसकी पॉलिसी। और दूसरे जो ममालिक हैं उनके लिए वो इंडिया की हेजमनी को बर्दाश्त कर रहे हैं मगर एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है। तो पाकिस्तान जो है वो उनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, और इस लिहाज से पाकिस्तान की ये पॉलिसी रहेगी कि वो अपनी इंटेग्रिटी को कायम रखे और स्ट्रगल और रेजिस्टेंस जारी रखे।
अच्छा, प्रोफेसर फैजान आप हमारे साथ रहें, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल दावर आप हमें बताएं कि आपके आने से पहले हम कश्मीर के सेगमेंट पे बात कर रहे थे, वहाँ आज भी ईद के मौके पे भी मुजाहरे जारी हैं, आपके इल्म में है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है पिछले चंद सालों में, आप इस बात को कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि वहाँ लोग इस वक्त भारतीय सरकार के खिलाफ आए दिन मुजाहरे कर रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके साथ? जी,
ये आपका बहुत ही बेगम साहिबा आपका बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। अब मैं पुराने इतिहास में जाऊं कि 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, किस लिए किया वो आपको सब सबको पता है क्यों किया, कि जब पाकिस्तान ने के रजाकार ट्राइबल्स वगैरह अंदर आए तो उन्होंने किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन साइन। उससे पहले वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, यू नो, ये जो हम हिस्ट्री को तो बदल नहीं सकते, सबको पता है क्या है। उसके बाद देखा जाए तो जब फिर इंडियन आर्मी जब आ गई तो दो तिहाई कश्मीर जो हमारे पास था, रादर हमारे पास, हमने उसको क्लियर किया पाकिस्तानी रेडर्स के साथ, आपके पास 1/3 और तकरीबन 40% एक्चुअली वो बचा रहा ना। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि हम कश्मीर में जो सूफी है, कश्मीरियत है, वो पाकिस्तान, वो जो इंडिया की जो सेकुलर इंक्लूसिवनेस है उसके साथ काफी वो उसकी अटैचमेंट है और वैसे ही है, और वो जो टोटल टेरियन बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपके हुक्मरानों ने जिया लाहौरकर और उनसे पहले भी उन्होंने कहा कि भाई वी हैव टू ब्लीड इंडिया बाय 1,000 cuts, तो ये हम शुरू करें। और उन्होंने आपके जो पेड एजेंट्स, दहशत गर्दी शुरू की, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को खूब पैसे देते रहे और अभी तक देते रहे हैं। और ये भी इंडिया की देखिए कितनी हम लोग नर्म किस्म के लोग हैं कि अभी तक हम आप जो हुर्रियत के लीडर जो आपके पेड एजेंट्स हैं जो गड़बड़ कराते हैं, जो इस्लाम के बारे नहीं बोलते कि इस्लाम कितना अच्छा फेथ है, कितना डेमोक्रेटिक है, कितना शांति प्रस्त अमन प्रस्त है, वो सिर्फ भड़काने में लगे हुए हैं। और ये मैं आपको बताऊं, अभी भी पिछले कुछ एक आध दो साल में ये ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैं ये साथ में आपके पाकिस्तानी पूरे अवाम को दुनिया में बताना चाहता हूं कि अभी भी हजारों हजारों लड़के बच्चे आ रहे हैं फौज में दाखिल होने के लिए, पुलिस में दाखिल होने के लिए, क्योंकि एक्चुअली उनके खून में है कश्मीरियत, जो कि सूफीज्म का एक बहुत बड़ा जिसमें कि उनके डीएनए में है। तो इसलिए ये चलता रहेगा, आप करते रहिए जितना जिसने कुछ करना है, अल्टीमेटली तो कुछ होगा नहीं।
अच्छा।
और आप देखिए अगर आप ये बात करते हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान में, वहाँ पे आपने सब शियाज को बेचारों को भगा दिया है।
हम मौजू की तरफ लौटते हैं,
जाके बैठ गए।
दावर साहब आप हमारे साथ रहे।
हमारे यहाँ हुक्म है कि एक, अगर मैं जो दिल्ली से रहता हूँ, अगर मैं जाके एक गज जमीन भी लेना चाहूँ तो मैं नहीं ले सकता। तो ये इतना फर्क है कि
प्रोफेसर फैजान, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मिनट है,
पाकिस्तान में लोगों को बेचारों को मैं भी मिलता हूँ बाहर जाके।
प्रोफेसर फैजान, हम चाहेंगे कि आप आखिर में समराइज करें कि मोदी के इस विजिट के बाद क्या आप देख रहे हैं, क्या सीन देख रहे हैं।
आज मुकद्दर इनको ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग जो मोदी लीजिए जो क्या है
अमेरिका में
जी।
ये ट्रिप जो है इसके ये इस वक्त इंडिया के दो बड़े इंटरेस्ट जो हैं वो एट स्टेक हैं। उसमें एक जो सबसे बड़ा है वो ये है कि बहुत से इंडियंस के जो आईटी इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि H-1 वीजा जो हैं उनकी बहुत सख्त स्क्रूटनी शुरू हो गई है अमेरिका की साइड पे
जी।
और मगर इतलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इस मौजू को शुरू नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको नाराज करें।
जी 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 जी।
और उनका जो दूसरा जो उनका जो इंटरेस्ट है इंडिया का वो है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और उसमें जैसे F-16 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी, लेकिन वो सब्जेक्टेड है कि अगर वो इतने F-16 खरीदेंगे तो वो होगी। और दूसरा जो ड्रोन्स जो हैं जो खासकर इंडियन नेवी के लिए हैं, ताकि वो चाइना की जो की बढ़ती हुई आमदोरफ्त जो है उसमें इंडियन ओशन में,
तो नजर आता है कि कश्मीर के मामले को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि उठाया जाएगा, लेकिन ये कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है जो कि शायद लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल की जाए।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रोफेसर फैजान हक जो बफेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और उनके साथ थे भारत से दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल कमाल दावर। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे मार्टिन क्रोसियस, प्रोड्यूसर सादिया असद। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔